ही दोष दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये दोषों की निधि है। तो दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे तो और क्या दिखेगा, सब जगह दोष दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी जहां वास्तव में दोष है वो दिखाई पड़ता है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जहां दोष नहीं होता है वहां भी दोष दिखाई पड़ता है। फिर भी इस कलयुग के अंदर रहते हुए, इस भयंकर समुद्र में निवास करते हुए, दोष देखने की प्रवृत्ति से, आदत से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, बड़ी विडंबना है हम सब के लिए। दोष सब जगह दिखाई दे रहा है, अंधे तो हम नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, सब जगह दोष दिखाई दे रहे हैं, परंतु देश दोष देखने की प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो जाए। और तुरंत सुखदेव जी उत्तर देते हैं, अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम रजेत, कि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम के पवित्र नामों का सतत कीर्तन और जप करते रहने से हृदय का शुद्धिकरण होगा, जिसके द्वारा जो दोष देखने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर अंदर है वो नष्ट हो जाएगी और अच्छे गुण लोगों में हम देखने लगेंगे। और फिर वाल्मीकि जी पूछते हैं, कस्य विभ्याति देवस्य जात रोषस्य संयुगे, कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर जिनके क्रोध आने पर, जब युद्ध में जब कोई क्रोधित हो जाता है तो ऐसे देखकर देवगण भी कांपने लगते हैं, ऐसे भी क्या कोई व्यक्ति हैं? तो नारद जी बड़े प्रसन्नता से इन प्रश्नों को सुन रहे थे, फिर हसमुख होकर, बड़े हर्षित होकर उन्होंने उत्तर दिया, सुनो आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अब दे रहा हूं। अवश्य ऐसे व्यक्ति हैं, और वो कौन है? वो इक्ष्वाकु वंश में आने वाले एक राजा है जिनका नाम है राम। तो मैं अभी आपको राम के गुणों का वर्णन करूंगा, ऐसे नारद जी वाल्मीकि जी को बता रहे हैं। अब जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो उनकी पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, उनके उनका वंशज क्या है इत्यादि। वैदिक सभ्यता ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान देता है तो केवल ये नहीं कहता कि मेरा नाम ये फलाना है, वो कहते मैं इनका पुत्र हूँ, इनका पोता हूँ, मैं इस वंश से आया हूँ, इस तरह से अपनी पहचान दी जाती है किसी दूसरे को। और ये एक सभ्य समाज में प्रथा है कि जब हमसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति आते हैं, सम्माननीय व्यक्ति आते हैं, तो अपना परिचय पहले देना चाहिए और फिर उनका परिचय पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद के गुफे में चले गए, या जिस गुफे में राजा मुचुकुंद सो रहे थे अनेक वर्षों तक, देवताओं के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, फिर जब देवगण विजयी हुए, राजा मुचुकुंद बड़े थक गए थे और देवताओं ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं केवल सोना चाहता हूँ, बस इतना थक गया हूँ कि मैं बस सोना चाहता हूँ, और ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि जो व्यक्ति मुझे जगाएगा, जैसे ही मैं आंख खोलकर उस व्यक्ति को देखूंगा उसका शरीर जल के भस्म हो जाना चाहिए। कितनी थकावट हुई होगी उनकी हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे जब कोई वरदान मांगता है, और ये तो भगवान के भक्त हैं, इसके पीछे भगवान की भी कोई योजना थी अवश्य। तो भगवान काल यवन का वध करवाना चाहते थे राजा मुचुकुंद के द्वारा। राजा मुचुकुंद अनेक वर्षों से सोए हुए थे उस गुफे के अंदर, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के ऊपर कृपा करना चाहते थे, उनको नींद से जगाना चाहते थे, तो अनेक कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं भगवान कृष्ण। तो काल यवन को अंदर ले आए, संपूर्ण कथा तो नहीं बता रहे हैं। काल यवन ने बड़े क्रूर तरीके से जगा दिया राजा मुचुकुंद को। राजा मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोल दी, काल यवन का शरीर भस्म हो गया। जब श्री कृष्ण को सामने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य का पान, के अमृत का पान अपने आंखों से लगातार करते रहे और जानना चाहते थे कि ये व्यक्ति कौन है। तो इसके पहले कि वो जानते या पूछते कि आप कौन हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम ऐसे ऐसे मुचुकुंद है और मैं इस वंश का हूं इत्यादि। और फिर स्वयं उत्तर जान गए कि हाँ, आप तो होंगे ही भगवान, क्योंकि ये लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से अपना अपनी जो पहचान है वो दिलाना, और वंश के साथ कि मैं इस वंश से हूं, ये महत्वपूर्ण बात मानी जाती है वैदिक सभ्यता में। तो जब भगवान की बात भी होती है तो भगवान के वंश का भी वर्णन होता है। जैसे ऐसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं या सोमवंशी हैं, और श्री राम सूर्यवंशी हैं। तो वंश का वर्णन भी महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। तो वैसे पुराणों में श्री राम के वंश का वर्णन आता है, थोड़ा बहुत भेद है वंशावली के वर्णन में, परंतु जिस वंशावली को हमने लिया है आज की चर्चा के लिए वो श्रीमद् भागवत की वंशावली है, जिसको हम मानते हैं। अन्य पुराणों की वंशावली को भी हम मानते हैं, परंतु हो सकता है वो किसी अन्य युग या किसी अन्य कल्प की कथा हो। तो खैर, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनके अनेक पुत्र थे, जैसे कि पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अत्रि नहीं, भृगु, क्रतु, पुलह, चतुष्कुमार, नारद जी, शिव जी, वशिष्ठ इत्यादि। इनमें से अधिकतर सभी प्रजापति थे, प्रजा उत्पन्न करने की सेवा कर रहे थे, सिवाय चतुष्कुमार और नारद जी जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। साथ साथ स्वायंभुव मनु भी उनके पुत्र हैं। स्वायंभुव मनु के साथ साथ में हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के पुत्र हैं सोम, और सोम जो चंद्र हैं उनसे सोम वंश शुरू होता है। क्षत्रियों के दो वंश हैं, एक चंद्रदेव से उत्पन्न होता है और आगे चल के इस सोम वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए, यदुकुल। और उधर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि। मरीचि के भी कई पुत्र थे, उनमें से एक थे कश्यप मुनि। दिति के द्वारा दिति से विवाह करके उत्पन्न हुए दैत्य, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि। और दिति की बहन अदिति से विवाह करके देवतागण ये प्रकट हो गए, और उनमें से एक हैं विवस्वान जो सूर्य देव हैं। और फिर विवस्वान से ये सूर्य वंश शुरू होता है, और विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्ध देव। ये सातवें मनु हैं। अब इस समय सातवां मन्वंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के इस कल्प में या इस दिवस में। और श्राद्ध देव वैवस्वत मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो इसका वर्णन भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तो करते ही हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैंने ये भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा शुरू हुई। महाराज इक्ष्वाकु से पृथ्वी के ऊपर सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। वैसे सूर्य देव तो सूर्यलोक में रहते हैं और मनु जो है वो भी ऊपरी लोकों में रहते हैं, परंतु इक्ष्वाकु राजा वो पृथ्वी पे रहा करते थे। इसलिए माना जाता है कि राजा इक्ष्वाकु से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। तो राजा इक्ष्वाकु ये भी बहुत महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। इनके ही वंश में दोनों सीता देवी और श्री रामचंद्र दोनों प्रकट हुए। इक्ष्वाकु राजा के एक पुत्र थे जिनका नाम था निमि, बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके वंश में आगे चल के अनेक महाराज जनक हुए। जनक जो है ये एक पदवी है, ऐसे अनेक हुए हैं। और एक जनक ऐसे थे जो सीता देवी के पिता हुए। तो ये है महाराज निमि के वंशज। और राजा इक्ष्वाकु के और भी कई पुत्र थे, उनके अनेक ऐसे वंशावली में आगे चलते चलते वंशज हुए। और उसके बाद आए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, सत्यवचनी है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाता है कि वो दो चीज़ों का व्रत उन्होंने लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और दूसरी बात कि जो भी मैंने वचन दिया है किसी को वो वचन मैं हमेशा रखूँगा, वचन भंग कभी नहीं करूँगा। तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की कथाएं तो देश भर में बच्चा बच्चा जानता है, आजकल जानते हैं कि है पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन में तो हमने बहुत सुना था। और उनका पुत्र था रोहित, रोहिताश्व, रोहतासगढ़ जो है बिहार में या हरियाणा में रोहतक है, ये सब इनके पीछे नाम रखे गए हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, और ये रोहतक तो रोहित कुल था पहले, अभी रोहित कुल से अपभ्रंश होकर रोहतक हो गया है हरियाणा में। तो रोहित उनके पुत्र, फिर आगे अनेक, और इनके रोहित के बाद भी इनके जो वंशज हैं, जैसे ऐसे नाम है ना, रस्तगी, रोहतगी, ये सब राजा रोहित के वंशज हैं सब। तो ऐसे कई वंशज हुए। और आगे चल के आए महाराज सगर। सगर, गर अर्थात विष, जहर। जब वो बच्चे थे तो उनके विमाताओं ने विष पिला पिला कर उनको मारने का प्रयास किया था, परंतु वो शक्तिशाली हो गए, विष से कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनका नाम ही हुआ सगर। तो सगर महाराज के पुत्र थे 60,000 पुत्र एक रानी के द्वारा और एक पुत्र दूसरे रानी के द्वारा। ये जो एक पुत्र था असमंजस, बड़ा नालायक था, सबको हैरान किया करता था। राजा सगर भी बड़े हैरान हो गए थे इस पुत्र के साथ। तो एक बार जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, इंद्रदेव ने अश्व या घोड़े को चोरी कर लिया, क्योंकि वो सोच रहे थे महाराज सगर बहुत शक्तिशाली हो जा रहे हैं, शायद मेरा पद ले लेंगे। तो घोड़ा चोरी करके इंद्रदेव ने गंगा सागर में कपिल देव के कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया, बांध दिया। और जो 60,000 पुत्र हैं महाराज सगर के, वो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आए, घोड़े को देखा, सोचा कि इस मुनि ने ही ये घोड़े को घोड़े की चोरी की है और आक्रमण करना चाह रहे थे कि अपने हुंकार मात्र से, बल्कि अपने अपराध के कारण ही उनके शरीर से ही एक अग्नि उत्पन्न हुई और उनका शरीर भस्म हो गया। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, सगर महाराज ने अंशुमान को भेजा कि भाई ढूंढो मेरे 60,000 पुत्र कहाँ हैं। तो ढूंढते ढूंढते आए यहाँ पर, कपिल मुनि से कृपा याचना की, क्षमा याचना की। कपिल मुनि प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि गंगा जी के जल का जब स्पर्श होगा इनके शरीर के भस्म से, तब इनका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान ने जीवन भर प्रयास किया गंगा जी को यहाँ धरती पर लाने के लिए, परंतु असफल हुए। उनके पुत्र थे महाराज दिलीप, वो भी असफल हुए। और हाँ, क्योंकि ऐसे इनकी खोज में ये 60,000 पुत्र इधर उधर जा रहे थे, महाराज सगर के आदेश से वो खुदाई कर रहे थे, फिर उसमें जल आया, इसलिए जो जल वहाँ भरा वो सागर कहलाता है महाराज सगर के पीछे। तो सागर शब्द का तात्पर्य ये है, क्योंकि महाराज सगर के आदेश अनुसार ये सब हुआ था। तो खैर, अंशुमान महाराज दिलीप भी असफल हुए। उसके बाद आए भगीरथ महाराज, अंततः भगीरथ महाराज सफल हुए, गंगा जी तैयार हुई कृपा करने के लिए। शिव जी भगीरथ महाराज के निवेदन पर भी आए गंगा जी के वेग को रोकने के लिए, संभालने के लिए। जैसे ही स्वर्ग लोक से गंगा जी बहती हुई आई, तो उनका वेग रोक लिया शिव जी ने अपनी जटाओं में और छोड़ दिया, इसलिए शिव जी का नाम है गंगाधर। अपने जटाओं में जिन्होंने गंगा जी को धारण किया, और फिर गंगा जी बहती आई। इस तरह से भगीरथ महाराज के पीछे गंगा जी का एक नाम है भागीरथी। तो भगीरथ महाराज के बाद में और कई वंशज हुए, उनमें से एक थे महाराज खटवांग, इनका भी उल्लेख श्रीमद् भागवत में आता है। ये भी देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहे थे असुरों के विरुद्ध। देवतागण बहुत प्रसन्न हुए, विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने, और खटवांग महाराज से पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो महाराज खटवांग ने कहा कि मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन की अवधि कितनी है, कितना समय बचा है मुझे मेरे लिए जीने के लिए। तो उन्होंने कहा बस एक क्षण बचा है आपके लिए। तो तुरंत वहां से महाराज खटवांग चले आए, अपना मन उन्होंने केंद्रित किया श्री कृष्ण के चरण कमलों में, पूरी तरह से शरणागत हो गए और अपना जीवन अल्प समय में ही सफल करके भगवान के धाम में चले गए। तो जब भी ये उदाहरण दिया जाता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में सफलता अल्प समय में भी प्राप्त की जा सकती है, जो भी हमारी अवस्था हो, जो भी हमारी आयु हो, जितना भी बचा हुआ समय हमारे पास है इस जीवन में, वो कम हो या ज़्यादा हो, हमें उसके हर एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए भगवान की सुदृढ़ रूप से भक्ति करने के लिए। और इस चीज के लिए खटवांग महाराज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो खटवांग महाराज के बाद भी ऐसे अनेक वंशज हुए। फिर आए महाराज दीर्घबाहु, और फिर आए बहुत प्रसिद्ध राजा महाराज रघु। रघु नाम उनको ये इसलिए लगा कि वो बहुत तीव्र गति से चलते थे, विशेष करके अपने रथ के ऊपर जब सवार होते थे युद्ध में, तो इतनी तीव्र गति से उनका चलना होता था कि उनका नाम हुआ रघु। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज रघु इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात से कि उनके वंशज श्री राम के अनेक नाम उनसे संबंधित हैं, जैसे कि राघव या रघुनंदन या रघुवंशी या रघुवंश तिलक, रघुवीर इत्यादि। तो महाराज रघु के वंश में आने वाले श्री राम का नाम रघु उनके पीछे भी रखा गया है। वैसे महाराज रघु बहुत शूरवीर राजा थे, बहुत तेजस्वी वीर्यवान थे। ऐसे बताया जाता है कि भारतवर्ष के उत्तरी भागों से भी और उत्तर दिशा में जाके हून म्लेच्छ आदि जो लोग थे, जहाँ हून निवास करते थे, मतलब कश्मीर आदि के भी और कहीं उत्तर दिशा में, वहाँ जाके उन प्रांतों के ऊपर विजय प्राप्त करके भी वो आए थे। और वो बहुत बड़े दानी थे। ऐसे बताया जाता है महाराज रघु के बारे में कि जो भी उनके दरबार में जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। और महाराज रघु के संदर्भ में प्रसिद्ध कवि कालिदास ने एक रचना की है जो बहुत प्रसिद्ध है, रघुवंश महाकाव्य माना जाता है ये। इस रघुवंश में महाराज दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, जो राम के बहुत बाद में आए, उन तक जितने भी राजाएं हुए उनका वर्णन किया है कालिदास ने, खास करके महाराज रघु का। और इसमें एक प्रसंग वो बताते हैं कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौत्स्य और उनके गुरु का नाम था वरतंत। तो जब अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जाना चाहते थे तो जाके नमस्कार किया और कहा कि आपको हम क्या दक्षिणा दे सकते हैं। तो जो ऋषि वरतंत थे उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांगी। आजकल के जमाने देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम 14 करोड़ या करोड़ों करोड़ रुपए के हिसाब से होगा। तो ये ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, लेकिन गुरु दक्षिणा है, मुझे तो देना चाहिए। तो क्या करते, गए महाराज रघु के पास, क्योंकि सुना था कि महाराज रघु के दरबार में जो जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो रघु महाराज के पास गए और दैव से हुआ ये कि महाराज रघु ने विशाल यज्ञ संपन्न किए थे, जिसके द्वारा जो भी भंडार में धन था वो सब समाप्त हो चुका था। अब दान देने के लिए कुछ था नहीं महाराज रघु के पास, परंतु महाराज रघु ने देखा कि दान मांगने कोई आए हैं हमारे दरबार में, उनको खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो फिर उन्होंने कुबेर के साथ युद्ध किया जो देवताओं के खजांची हैं। युद्ध में विजयी हुए और विजयी होकर धन ले आए और फिर कौत्स्य को दिया, और कौत्स्य ने जाके फिर ऋषि वरतंत को ये दान दे दिया। ऋषि वरतंत बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको एक बहुत ही योग्य पुत्र होगा, और आगे चल के योग्य पुत्र हुए उनके, जिनका नाम था राजा अज। अज महाराज के पुत्र थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ भी बहुत शूरवीर थे, बहुत योग्य थे। श्री राम के जन्म के समय लगभग दशरथ महाराज की आयु 60,000 वर्षों की थी। ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते आजकल के ज़माने में। महाराज दशरथ के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका परिणाम उनके जीवन पर बहुत भारी हुआ। एक बार हुआ ये पहली घटना इस प्रकार से है कि महाराज दशरथ का यश तो सब जगह फैला हुआ था, रावण के कानों तक खबर पहुंची कि दशरथ महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनको उनके मन में रावण के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अपने दूत को भेजा कि जाओ दशरथ महाराज से कहो कि वो मेरे अधीन हो जाए और यदि अधीन न हो तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो जब ये दूत दशरथ महाराज के दरबार में आए तो महाराज दशरथ खड़े हुए, उन्होंने एक दिशा में तीर छोड़े दक्षिण की ओर, कई तीर छोड़े और फिर उस दूत से कहा कि आप अब लंका लौट के जाइए और अब देखेंगे कि लंका के दरवाजे अब बंद हो गए हैं और खुल नहीं रहे हैं। कैसे? इन तीरों के द्वारा। और जाकर कह देना रावण से कि हमने ऐसे संदेश भेजा है। तो जब ये दूत वापस गया तो देखा कि वाकई उन तीरों के द्वारा लंका के दरवाजे बंद हुए हैं, खुल नहीं रहे हैं। तो रावण का जब ये पता चला तो सोचने लगा कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर रावण ने तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या करके ब्रह्मा जी जब सामने आए, ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्या चाहते हो? फिर कहा मैं चाहता हूं कि वो जो दशरथ महाराज है उनका कोई पुत्र न हो। देखिए असुरी वृत्ति कैसी है। तो वरदान तो मिल गया। अब ये पहली घटना थी। अब दूसरी घटना ऐसे हुई कि महाराज दशरथ जो हैं इतने निपुण थे तीर चलाने में कि ऐसे बताया जाता था कि केवल ध्वनि सुनने से वो अपने निशानी पे तीर छोड़ सकते थे और सही निशाने पर तीर लग जाती थी। देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उनको, केवल सुनने से। तो एक बार जब शिकार के लिए निकले थे तो उन्होंने ऐसे आवाज सुनी जिससे कि उनको लगा कि शायद एक हाथी किसी सरोवर में या नदी में पानी पी रहा है। तो ध्वनि सुनकर महाराज दशरथ ने अपनी तीर छोड़ दी, परंतु वो कोई हाथी या कोई अन्य पशु नहीं था, वो तो एक तरुण थे जिनका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को ये तीर लगी, वो बेचारा गिर पड़ा और जब महाराज दशरथ वहाँ पर पहुँचे हैरान हो गए कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे तरुण की हत्या कर दी मैंने। अभी जैसे जैसे प्राण निकलते जा रहे थे श्रवण कुमार के शरीर से, श्रवण कुमार ने दशरथ महाराज से कहा कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे बूढ़े माता पिता हैं थोड़ी दूर पर और मैं उनके लिए पानी लेने आया था, अब उनको बहुत प्यास लगी होगी, कम से कम उनको जाके पानी तो पिलाओ। और ऐसे कह के प्राण त्याग दिए। बड़े भारी हृदय से और घबराते हुए महाराज दशरथ पानी लेकर गए, पहले उनके बूढ़ी माता पिता को पिलाया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रवण कुमार ही आया होगा। फिर पानी पिलाने के बाद जब दशरथ महाराज ने घबराकर अपनी पहचान कही, मेरा नाम दशरथ है इत्यादि, और फिर खबर दे दी कि ऐसे गलती से मेरे हाथों से तीर छूट गया और आपके पुत्र का देहांत हो गया है। तो जब खबर सुनी तो दोनों माता पिता बेचारे बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि अब जीवित रहने से क्या मतलब है। उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए, परंतु इसके पहले उन्होंने दशरथ महाराज को श्राप दे दिया कि जिस तरह से हमारे पुत्र को तुमने हमसे अलग किया है और पुत्र शोक में हम प्राण त्याग कर रहे हैं, आगे चल के तुम्हें भी ऐसे पुत्र शोक का सामना करना होगा, अनुभव करना होगा, और तुम भी ऐसे ही अपने प्राण त्याग करोगे अपने पुत्र के पीछे शोक करते करते। ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी महाराज दशरथ के जीवन में। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हुई ऐसे कि एक बार देवताओं ने महाराज दशरथ को निमंत्रण किया कि आप आइए हमारे पक्ष में लड़िए देव असुरों के विरुद्ध। दशरथ महाराज की शूर वीरता की खबर तो देवलोक तक पहुंची हुई थी, तो इस समय वो निकल पड़े और उनकी जो रानी थी, सबसे छोटी रानी, उनके उनका नाम था कैकेयी, वो उनके साथ में आई। कैकेयी रथ पे थी, रथ चला रही थी बल्कि। और एक बार हुआ ये कि युद्ध में दशरथ महाराज घायल हो गए। कैकेयी ने बड़े दक्षता से रथ को इस तरह से घुमा लिया ताकि राजा दशरथ की जान बच जाए, सुरक्षित स्थान में उनको ले गए। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए कैकेयी के ऊपर और कहा कि हे कैकेयी, जो वरदान चाहते हो वो मांगो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी ने कहा कि ये दो वरदान मैं अब नहीं मांगूंगी, बाद में मांगूंगी, जब इच्छा होगी तब। तो ऐसी ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनमें जिनका असर दशरथ महाराज के जीवन में हुआ, और ये तीन घटनाएं नहीं होती तो शायद फिर रामायण नहीं होता। तो पहली घटना तो ये थी कि रावण ने ऐसे वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी के द्वारा कि उनको पुत्र नहीं होना चाहिए, फिर पुत्र हुए कैसे? वैसे देखा जाए तो 60,000 वर्षों तक नहीं हुए पुत्र, इसलिए जब पुत्र हुए तो उनकी आयु इतनी बढ़ गई थी। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो जो 80 वर्ष का कोई व्यक्ति हो, 90 वर्ष का व्यक्ति हो, गृहस्थ जीवन में उसे पुत्र नहीं मिले 90 साल की उम्र में हो जाए, तो 60,000 वर्ष की आयु में उनको पुत्र, उनके 4 पुत्र हुए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने सारे यज्ञ आदि किए, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र काम यज्ञ इत्यादि, इसका वर्णन भी करते हैं बड़े विस्तार में वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में। तो खैर उनके 4 पुत्र हुए, कौशल्या के गर्भ से आए श्री राम, कैकेयी के गर्भ से आए भरत, और सुमित्रा देवी के गर्भ से आए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण सदैव साथ में रहा करते थे और शत्रुघ्न और भरत हमेशा साथ में रहा करते थे। इस तरह से ये दो जोड़ी हो गई। और जब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगना चाहा, जबकि दशरथ महाराज श्री राम को युवराज कह के घोषित करना चाहते थे, तो उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों ही राज कैकेयी प्रांत में थे। कैकेयी के पिता राजा कैकेयी के राजधानी में थे। उनको बुलवाया गया। तो इस समय राम और लक्ष्मण जब थे, दशरथ महाराज ने विचार किया कि अब बहुत समय हो चुका, अब मेरा पुत्र है, हर तरह से देखा जाए तो योग्य है, अब वो राजकुमार या युवराज कहके घोषित मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया, अपने प्रस्ताव रखा सामने। बड़े आनंद से उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर ली। जितने भी और ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि थे, उन सबको बुलाया महाराज दशरथ ने। उनसे उन्होंने सलाह ले ली, अपना प्रस्ताव रखा, सब ने आशीर्वाद दिया, कहा हाँ हाँ बहुत उचित है, ये बहुत सही कार्य है, आगे बढ़िए, श्री राम जैसे और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तुरंत उन्हें आप युवराज कह के घोषित करिए। फिर जो और महत्वपूर्ण वैश्य आदि थे उनको भी बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया। इस तरह से महाराज दशरथ ने प्रजा के सदस्यों को बुलाकर चर्चा करके विचार विमर्श करके बाद में घोषणा की सबके सामने कि कल के दिन अब श्री राम युवराज घोषित किए जाएंगे और जो अनुष्ठान है वो कल के दिन होगा। और उस समय कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई थी। वास्तव में कैकेयी भी श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, जितना कि वो भरत से करती थी। परंतु एक व्यक्ति थी, एक महिला थी, मंथरा, जिन्होंने कि कैकेयी के मन में विष भर दिया और कैकेयी को याद दिलाया कि दो वरदान मांगने हैं अभी तक तुम्हारे और मांगने का समय आ गया है। तुम बड़े हर्षित होकर अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर इधर उधर घूम रही हो, बड़ी मूर्ख हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, अब जाओ। अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, ये कोई पूछने का सवाल है, नहीं जानते क्या हुआ। अरे श्री राम युवराज कर घोषित किए जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। तो मंथरा और आगे बोलती गई और धीरे 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 से कैकेयी का मन परिवर्तित होने लगा। तो देखिए बुरे संग का प्रभाव कैसे होता है। कैकेयी के मन में वास्तव में सच्चा प्रेम था राम के प्रति, वात्सल्य प्रेम था, परंतु मंथरा के संग में देखिए कैसा परिवर्तन हुआ। वही प्रेम इतने गहरे विष में या द्वेष में परिवर्तित हो गया। फिर मंथरा के षड्यंत्र के द्वारा कैकेयी महाराज दशरथ के पास गई और वो दो वरदान मांगे। पहला वरदान था कि मेरे पुत्र भरत को युवराज घोषित करना चाहिए, श्री राम को नहीं। और दूसरा कि श्री राम को 14 सालों तक वनवास में भेजना चाहिए। महाराज दशरथ को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या सुन रहे हैं और बहुत प्रयास किया महाराज दशरथ ने कैकेयी को समझाने के लिए। काफी लंबा प्रसंग है, वाल्मीकि जी बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं इसका। हृदय को बड़े दुख पहुंचाने वाली बात है, महाराज दशरथ की दशा देख के बहुत एक दया उत्पन्न करने वाली एक दशा है उनकी। तो अंततः श्री राम ने अपने पिता की बात मान ली। बड़े भारी हृदय से दशरथ महाराज को ऐसे कहना पड़ा और श्री राम फिर चले गए। साथ में लक्ष्मण भी गए, सीता देवी भी तो गईं। दशरथ महाराज पुत्र स्नेह की भावना के कारण उस विरह को सहन नहीं कर पाए और श्री राम के अयोध्या छोड़ते ही बहुत कम समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे महाराज दशरथ की कथा है। महाराज दशरथ ने प्राण त्यागने के बाद महाराज भरत जब लौट के आए तो वो तो और भी हैरान हो गए। अपनी माता कैकेयी को धमकी दी कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं भी श्री राम के साथ चले जाऊँगा, बल्कि ये अयोध्या जंगल बन जाएगा और जंगल अयोध्या बन जाएगा, मैं श्री राम के साथ में जाके रहूँगा। तो खैर अंत में चित्रकूट पहुँचे भरत श्री राम को वापस बुलाने के लिए। श्री राम और भरत के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ, अनेक ऋषि मुनिगण भी वहाँ पर उपस्थित थे। इसका भी वर्णन बहुत अच्छे ढंग से वाल्मीकि मुनि करते हैं, परंतु भरत अपने प्रयास में असफल रहे, खाली हाथ लौटना पड़ा। बल्कि खाली हाथ नहीं, श्री रामचंद्र के पादुकाओं को साथ में लेकर आए उन पादुकाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया, उनकी आरती उतारी, वो स्वयं नंदगांव में रहे। ये नंदगांव नहीं, ब्रज का नहीं, अयोध्या के पास जो नंदगांव है वहाँ नंदग्राम में रहे और 14 साल उन्होंने श्री राम के पादुकाओं को की सेवा समझ के अपने राज को संभालने के दायित्व को संभाला। कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं। और फिर 14 वर्षों के बाद श्री राम तो लौटकर आ गए। इस तरह से दशरथ महाराज के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो आगे चल के फिर बहुत बड़े परिणाम के कारण हुए। इसलिए हम देखते हैं कि जीवन में कभी कभी बहुत हमने पहले किए हुए काम बाद में आके हमें कष्ट देते हैं। कभी कभी अभी जो हम कार्य करते हैं उसके परिणाम तो कभी तुरंत आ जाते हैं, कभी कभी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, कभी अनेक जन्मों के बाद भी वो कार्य जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और महाराज दशरथ की बात देखिए, क्षत्रिय होने के कारण शिकार आदि किया करते थे, परंतु देखिए शिकार करने की अनुमति तो दी जाती है, परंतु जो पशुओं की हत्या करने के लिए जो जिसमें खतरा होता है वो तो रहता ही है। और इसका परिणाम क्या हुआ, एक पशु की हत्या करने के लिए गए महाराज दशरथ और देखिए क्या हुआ, क्या का क्या हो गया। उसी तरह से क्षत्रियों के लिए ऐसे भी छूट दी जाती है कि वो कभी द्यूत क्रीड़ा करें, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि कोई व्यक्ति यदि ललकारता है किसी क्षत्रिय को युद्ध में किसी भी कार्य के लिए तो मना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा के चेतावनी को स्वीकार किया और फिर देखिए क्या हुआ, सब कुछ खो बैठे। तो हालांकि क्षत्रियों के लिए ये वर्जित नहीं था द्यूत क्रीड़ा और शिकार आदि, परंतु कितना खतरनाक था इसे हम जान सकते हैं। तो दशरथ महाराज के जीवन में भी कितना कष्ट हुआ अंत में, और इस एक कार्य की वजह से उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। तो दशरथ महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आगे राज्य करने लगे। तो इस तरह से वंशावली अब समाप्त हुई श्री राम की। नारद जी अब आगे बताने जा रहे हैं कि श्री राम के कौन से लक्षण हैं, उनके कौन से गुण हैं। लगभग 70 के करीब गुणों का उल्लेख वो करते हैं श्री राम चरित्र का वर्णन करते करते। तो संक्षेप में इन गुणों का वर्णन हम कल सुनेंगे और आगे चल के भी अन्य जो गुण हैं श्री रामचंद्र के, इनके ऊपर कुछ व्याख्या करने की का प्रयास हम करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।